भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादिसागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम समझ पाते कि ये सब चीजें खोने और पाने के बाद भी ना हम सचमुच में कुछ पा पाते हैं और ना ही हम यहाँ इस जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को खोकर अपना कुछ खोते हैं। बहुत पहले मैंने शायद आपसे कभी इस बात का जिक्र भी किया हो, एक व्यक्ति मेरे पास 4 महीने लगातार एक चतुर्मास में रोज आकर बैठ जाया करते थे और कुछ ना कुछ किसी न किसी विषय पर हम लोग बात करा करते। धीरे धीरे यह क्रम तो चलता रहा, लेकिन हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम यदि नहीं पाते हैं तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होती, कोई दूसरा पा लेता है तो फिर हमारी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगा, तो जब वो एक दिन 4 महीने होने को पूरे थे, जैसे कि अभी होने को हैं 4 महीने, ऐसे ही वो बाहर निकले, तो कुछ लोगों ने मजाक के मूड में और उनसे कहा कि आप रोज आते हैं, रोज इतनी बातें करते हैं महाराज से, आपने क्या पाया? तो उन्होंने भी बड़े शालीनता से, और सचमुच जो पा लेता है वह बहुत शालीन ही होता है, उन्होंने बहुत शालीनता से कहा कि यहां मैं पाने नहीं आया, यहां तो मैं खोने आता था, अगर मेरे से पाने की बात पूछते हो तो मैंने कुछ नहीं पाया। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, वो तो सोच रहे थे कि हम इनकी हंसी उड़ाएंगे, इनका मजा लेंगे, लेकिन इन्होंने तो इतने गंभीरता से इस बात को कह दिया, समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तब उनका जवाब यही था कि यहां मुझे कुछ पाने के लिए नहीं आना था, जो मुझे पाना था वो मेरे पास था, पर मुझे जो खोना था वो मैंने खो दिया, मैंने यहां आकर कषायें खोई हैं, मैंने यहां आकर अपने अपराध खोए हैं, मैंने यहां आकर अपने मान सम्मान की भावना को खोया, और जैसे ही मैंने इन अपनी कषायों को खोया है तो मुझे मालूम पड़ गया है कि वो जो पाने लायक है वो मेरे पास ही है। काश हम भी आज जब इस चतुर्मास के समापन की वेला में बैठे हैं इस बात का विचार कर पाते कि हमने सचमुच जो हमारे विकारी भाव हैं वो खोए हैं, तो समझना कि हमने सब कुछ पा लिया है। और अगर कुछ शब्द हमारे हाथ में और कुछ विचार हमारे हाथ में रह गए हैं, तो वो शब्द और विचार ज्यादा हमारे जीवन को कुछ दे नहीं पाएंगे। जीवन अगर बनता है तो विचारों को जीवन में उतारने से बनता है। यहां सब दुखी हैं, किसी के कमती दुख हैं, किसी के ज्यादा दुख हैं, पर कोई यहां सुखी दिखाई नहीं पड़ता इस संसार में। ऐसा हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। इतना जरूर है कि हमारी आदत हो गई है उन दुखों को भोगने की, तो हमें वे दुख अब दुख नहीं मालूम पड़ते। और जब हम रास्ते से गुजरते हैं और कोई अचानक पूछ लेता है कि कैसा है, सब ठीक है, तो हम बड़े मजे से ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं, हाँ सब ठीक है। और वो जो जिससे हमने कहा है वो भी समझता है कि कितना क्या ठीक है, क्योंकि वो भी जानता है कि जब उससे कोई पूछेगा कि सब ठीक है, तो वो भी नहीं ठीक होते हुए भी यही कहने के लिए मजबूर है कि हाँ सब ठीक है। हम कभी कभी, हमें दुख है इस बात का एहसास होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि जिस दिन भी हम दुख को स्वीकार कर लेंगे उस दिन कोई ना कोई सुख पाने का रास्ता हमारे हाथ अचानक लग जाएगा। ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या हम सुख नहीं पाना चाहते। हाँ, वे सब लोग सुख नहीं पाना चाहते जिन्हें दुख का एहसास ही नहीं होता। जिसे बहुत पीड़ा हो रही हो वो ऐसा नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं जी सकता जिस तरह से हम जी रहे हैं। इससे तो मालूम पड़ता है कि हम इन भौतिक चीजों में कुछ ना कुछ सुख मान रहे हैं और उसी सुख में मशगूल होकर के अपने उस अनादिकाल के दुख को विस्मृत कर चुके हैं। लगता तो ऐसे ही। और जब हम अपने सुख, अपने दुख को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो फिर दुख से बचने का उपाय या कि दुख के कौन से कारण हैं, इन पर भी विचार नहीं करते। चलिए, ना सही हमें दुख का अनुभव हो या ना हो, हम थोड़ा सा विचार करें कि इस संसार में हमने अगर दुख उठाए हैं, पहले उठाए हैं या हम अपने जीवन में उठा रहे हैं, या कि हम आगे भी अपने जीवन में दुख उठा सकते हैं अगर हम दुख के कारणों पर विचार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जीवन में दुख के कारणों में, बहुत सारे कारणों में, कुछ थोड़े से कारण तो अनिवार्य कारण हैं जिन पर हमें जरूर से विचार कर लेना चाहिए। क्या होता है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं और वहीं से एक दुख की प्रक्रिया हमारे शुरू हो जाती है, और वो दुख हमारे अपने आसपास के लोग हमें देते हैं, वो हमारे पास है हमेशा से, पर वे सब लोग उसमें निमित्त भी बनते हैं, वे स्वयं भी दुख उठाते हैं और हमें भी दुख में डाल देते हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा। देखो, अच्छा, जब भी कोई बेटा पैदा होता है तो उसके जीवन की यात्रा कहां से शुरू होती है? उसको सबसे पहले अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो पूछा जाता है नर्स से कि कितना वजन है। तो अगर कोई बता दे कि 7 पाउंड का हुआ है, तो उसी समय ख्याल आ जाता है कि वो जो बाजू वालों के यहां हुआ था वो तो 9 पाउंड का था, मेरा फिर भी 2 पाउंड का कम है। अब ये मेरा बेटा यहां से अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है कि दूसरे का 9 पाउंड का था और मेरा 7 का है, ये मेरे लिए पीड़ा का कारण बन गया। और अब वो बेटा इस दौड़ में शामिल हो जाए कि वो भी 10 पाउंड का हो, तब तो आनंद मिलेगा। प्रतिस्पर्धा में हम उसे अपने बेटे को बचपन से डालते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, देर से बोलता है, तब भी हम पीड़ा पाते हैं कि अरे वो जो उनका बाजू वाले का था 1.25 साल में बोलने लगा था, 1.5 और 2 का होने को है, बोलता ही नहीं। उसे हम उसी दृष्टि से देखते हैं, उसके भीतर हम वे सारे विचार भर देते हैं, उसे हम दौड़ में शामिल कर देते हैं। महत्वाकांक्षा की दौड़ में हम बचपन से एक दूसरे से तुलना करके और अपने जीवन को डाल देते हैं। और महत्वाकांक्षाओं का तो ऐसा है कि वे कभी भी पूरी नहीं होती। एक जीवन हमारा बहुत छोटा सा है कि हम अपने मन में उठती हुई सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। और ऐसी आकांक्षाएं जो कि हमारे अपने जीवन में कोई ज्यादा हमें लाभ नहीं देने वाली हैं, ऐसी भी आकांक्षाएं हमारे जीवन में हम बचपन से शुरू करते हैं, वो अगर स्कूल में जाता है, नंबर कम आते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि और पढ़ो और दौड़ो। खेल में भी अगर तुम पिछड़ी हो तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो आगे ही होना चाहिए, पढ़ने में भी आगे, खेलने भी आगे में भी आगे। और अगर पास पड़ोस में कभी झगड़ा हो तो दो चांटे मार के वापस लौटना, खा के मत लौटो, उसमें भी आगे। अगर कहीं पर कहीं झगड़ा हो तो वहां पर भी हम चाहते हैं कि हमारा बेटा वहां पर भी जीत करके लौटे। हम उसे बचपन से इस तरह की तुलना और प्रतिस्पर्धा सिखा देते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में पूरा जीवन अपना और अपने आसपास का दुखद होता चला जाता है। किसी भी योग्यता को हासिल कर लेना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस योग्यता को हासिल करके दूसरे को अयोग्य साबित करना, ये तो पीड़ा का ही कारण है। ज्ञान हासिल करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसलिए हासिल करना कि दूसरे को अज्ञानी साबित कर सकूं, यही तो पीड़ा का कारण है। पैसा होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपने को धनवान इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि दूसरे को गरीब कह सकूं, यही तो पीड़ा में ले जाने वाली चीज है। हमारा सुख न धन में है, न ज्ञान में है, न हमारा और कोई योग्यता में है। हमारा सारा सुख दूसरे से अधिक होने में अगर है तो ऐसा सुख हमें अंततः दुख में ही ले जाता है। और शायद हर एक के जीवन में ऐसा ही दुख है। बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरे के दुख से दुखी हैं। जो दूसरे के दुख से दुखी हैं, अगर कहीं मिल जाएं तो उनके पैर छू लेना, वे प्रणाम करने योग्य लोग हैं। जो लोग अपने दुख से दुखी हैं, कभी हो सके तो उनके कंधे पर सहानुभूति से भर करके हाथ रख देना, क्योंकि वे अपने दुख से दुखी हैं। और अगर कहीं दूसरे के सुख से दुखी लोग मिल जाएं तो उन्हें दूर से प्रणाम करके एक तरफ निकल जाना, क्योंकि इनके लिए तो भगवान भी आ जाए तो भी सुखी नहीं कर सकता। जिसका दुख दूसरे के सुख पर टिका हुआ है और जिसका सुख दूसरे के दुख पर टिका हुआ है, उस व्यक्ति को यहां पर सुख पाने का कोई उपाय नहीं। और अधिकांश हम सब में से अधिकांश लोगों का सुख इस बात पे टिका है कि दूसरा दुखी है, मैं सुखी हूं, या कि मैं दुखी हूं क्योंकि दूसरा क्यों सुखी है। ये जो कंपैरिजन है, ये जो हमारी तुलना है, यही हमें दुख में निरंतर ले जा रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते। एक गांव में बाढ़ आ गई। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति उस बाढ़ से पीड़ित अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा है उदास। उसका पड़ोसी उसके पास आता है और पूछता है कि बाबा, क्या तुम्हारा भी सब कुछ पानी में बह गया, नदी में बह गया? तो वो जो बूढ़ा उदास था वो थोड़ा चौंकता है ये बात सुनकर कि तुम्हारा भी, इसका मतलब है कि और लोगों का भी। तो वो पूछता है बड़े प्रेम से अपने उस पड़ोसी से कि ये जो तुमने कहा कि तुम्हारा भी, इसका अर्थ क्या गांव वालों का भी? बहुत कुछ नदी में बह गया, उनकी मवेशियों का क्या हुआ? उनके जानवर भी बह गए क्या? उनका रुपया पैसा मकान वो भी बह गया क्या? पड़ोसी ने कहा, पड़ोसी ने तो ये सोचा कि देखो बाबा को कितनी चिंता है गांव की, कितनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वो। तो उसने कहा कि हाँ बाबा, यहां तो सारे गांव का ही, जिसका जो भी सामान था बाढ़ में सब नष्ट हो गया। तब उस बाबा ने मालूम क्या पूछा? अच्छा, गांव के सब लोगों का नष्ट हो गया, तुम्हारा क्या हुआ, पड़ोसी का क्या हुआ? तो उसने कहा, पड़ोसी ने तो सोचा पहले मन ही मन कि देखो तो गांव की बाबा को कितनी चिंता है और मेरी भी कितनी चिंता है, पूछ रहे हैं कि मेरा क्या हुआ। तो पड़ोसी ने कहा कि बाबा कुछ मत पूछो, मेरा भी सब लूट गया, मेरा भी सब नष्ट हो गया। तब उतने बूढ़े बाबा ने क्या कहा, अरे मैं व्यर्थ ही सुबह से चिंता में बैठा हुआ था, कोई बात नहीं, जब सबका और तुम्हारा भी लूट गया तो अब कोई चिंता की बात नहीं, अब मेरा लूटा हुआ मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देता, क्योंकि बाजू वाले का भी लूट गया है इसलिए मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। सुबह से मैं इस बात के लिए चिंतित था कि सिर्फ मेरा ही लूटा है, सिर्फ मेरा ही नष्ट हुआ है और किसी का नहीं हुआ, इस बात की मुझे पीड़ा थी। अब मुझे मालूम पड़ा कि गांव वालों का भी सब नष्ट हो गया है और मेरे पड़ोसी का भी सब नष्ट हो गया है। ये बात अब मेरे दुख को कम कर रही है, इसका मतलब है कि मुझे सुख पहुंचा रही है। ये है हमारा मन का विचार, ये है हमारे जीने की प्रक्रिया। और ऐसे हम अगर जिएंगे तो सिवाय दुख के हमें आज तक ना कुछ मिला है और सचमुच ना हम आगे कुछ पा पाएंगे। मुझे हमेशा लगा करता है, मैं हमेशा कहा करता हूं, और बहुत पहले मैंने लिखा था, बहुत पहले जब मैं यहां आया था, लोग मेरी अर्थी संभाल लें आए, शौक से आए, लेकिन वे ही आए जो मेरे सुख में सुखी हो सके हैं, वरना मेरे दुख में सिर्फ झूठी संवेदना व्यक्त करने कोई ना आए। जिंदगी भर जिसके सुख में हमने अपना सुख नहीं माना, उसके दुख में हम शामिल होने चले जाते हैं। हम उसके सुख में तो जिंदगी भर दुखी होते रहे, आज उसके दुख में शायद हम दुखी होने नहीं बल्कि अपना सुख व्यक्त करने चले जाते हैं कि ठीक है अब तुम भी भोगो। बाहर से कहते नहीं हैं, लेकिन भीतर भीतर तो ऐसा भाव कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में पड़ा ही रहता है। और वही तो हमें उस क्षण में, बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरे के दुख से दुखी हों और दूसरे के सुख में अपना सुख दूना कर लेवें, ऐसे बहुत विरले लोग इक्का दुक्का कहीं मिल जाएं तो जरूर उनके साथ थोड़ी देर बैठने की कोशिश करिए, वरना पूरा जीवन इसी प्रतिस्पर्धा में गुजर जाता है और हम निरंतर दुख कमाते चले जाते हैं। और दूसरी चीज, यहां हमें बहुत चिंता है इस बात की, भले ही हमने कुछ नहीं पाया लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि लोग देख सकें कि हमने यहां बहुत कुछ पाया है। हमने क्या पाया इसकी हमें जरा भी चिंता नहीं है, लोग देख सकें कि हमने बहुत कुछ पाया है। हम भले ही चीजों के मालिक ना हो लेकिन हम अपनी मालकियत हर चीज पर जाहिर करना पसंद करने वाले लोग, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्टेटस के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगाने वाले लोग हैं। बहुत गौर से अपने बारे में सोचना, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और वो प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा जिसके लिए हम सुबह से शाम तक बेतहाशा भागते हैं और बहुत से उपाय करते हैं सिर्फ थोड़े से अपने थोड़े से प्रतिष्ठा के सुख के लिए। हर आदमी एक दौड़ में है। एक बार एक व्यक्ति के घर में चोर घुसे थे तो चोर खोजते खोजते परेशान हो गए, कहीं कुछ नहीं मिला। और जब चोरों ने देखा कि कहीं कुछ नहीं है तो कम से कम ये तो देखो कि वो मालिक कहां है इस घर का, तो वो मालिक भी गायब, वो भी नहीं दिखा, दरवाजा भीतर से बंद था और मालिक कहां गायब हो जाएगा। उन्होंने बहुत खोजा तो वो मालिक अपने ही घर में एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ खड़ा था। वो चोर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा जनाब आप यहां छुपे खड़े हैं, और देखा उन्होंने कि वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो चोरों को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि आप ऐसे यहां क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा, तब उस घर के मालिक ने मालूम क्या कहा, इज्जत का सवाल है, चुपचाप चले जाओ, किसी से बाहर कहना मत कि धेला भी नहीं मिला। प्रतिष्ठा का सवाल है, लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो इसीलिए यहां छुपा था कि तुम्हें मिलूं ही नहीं, लेकिन अब अगर मेरा तुम्हारा आमना सामना हो गया है तो इतना ख्याल रखना, मेरे मुझ गरीब आदमी के ऊपर इतनी कृपा करना कि बाहर जाकर के लोगों से कुछ मत कहना कि मुझे कुछ नहीं मिला। हम झूठी प्रतिष्ठा पर बहुत अधिक टिके हुए हैं, ये हम कभी सोच नहीं पाते हैं। यहां तक एक घटना हुई कि चार लोगों ने एक आदमी को पकड़ लिया रास्ते में, बेचारों ठग थे और जब पकड़ लिया तो छीना झपटी होना शुरू हुई, और वो जो जिस आदमी को पकड़ा था वो अपना ऊपर का पॉकेट पकड़े हो और बाजू का पॉकेट दोनों हाथ से पकड़े हो और छीना झपटी चल रही है। वो चार लोग सोच में पड़ गए कि जरूर होना हो, बहुत मार लिए है तब तो इतना, ये और कुछ नहीं, अपना बचाव नहीं कर रहा है, बस पॉकेट बचाए हुए हैं, बहुत माल होगा, लेकिन चार से कहां जीतने वाला। एक बामुश्किल उन्होंने उसके हाथ हटाए, पॉकेट ही फट गया, लेकिन पॉकेट खाली था, दोनों पॉकेट खाली। उन्होंने कहा इतनी मेहनत खाली पॉकेट के लिए? उन्होंने कहा खाली पॉकेट का सवाल नहीं है, सवाल प्रतिष्ठा का है, मालूम पड़ गया अगर कि कुछ भी नहीं है पॉकेट में तो लोग क्या कहेंगे। इतनी सारी लड़ाई हमने लड़ी सिर्फ इसके लिए लड़ी कि किसी को ये ना मालूम पड़ जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमें ये छोटी सी घटना बिल्कुल ऐसी मालूम पड़ती कि अरे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अपने भीतर इस छोटी सी घटना को झांक करके देखें कि हम भी वैसे ही लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रदर्शित ये करते हैं कि जैसे हमारे पास सब कुछ है, और अगर हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा शायद धूमिल पड़ जाएगी। आज बहुत सारी चीजें, व्यक्ति, बहुत सारे पाप, मैं जैसा देखता हूं बहुत सारे पाप अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। आवश्यक नहीं है, उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है जीवन में, फिर भी वे चीजें घर में होनी चाहिए, वरना लोग आएंगे, वे देखेंगे, कहेंगे टेलीविजन भी नहीं, अरे कितने गरीब आदमी हो, अरे फ्रिज भी नहीं आपके यहां पर ठंडा पानी और आइसक्रीम के लिए। अब भले ही उसको फ्रिज की कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसे फ्रिज रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस का सवाल है। और अगर वो एक आध दिन आपके यहां मेहमान हुआ और उसने गर्म पानी मांगा तो आपको लगेगा कि आज गीजर होता तो अच्छा रहता, वो क्या सोचेगा कि इनके यहां पर पानी गर्म करने तक की मशीन नहीं आई, कपड़े धोने की लोगों के यहां मशीन आ गई, इनके यहां पानी गर्म करने की भी नहीं आई, रख लो वो भी रख लो। इतनी सारी चीजें हमने जोड़ करके घर में रखी हैं और उन सारी चीजों के जोड़ने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया, अपनी सारी सांसों को लगा दिया, किस किस के साथ बेईमानी की, कितना कितना पाप किया, लेकिन काहे के लिए? वे चीजें मेरे उपयोग में नहीं आती हैं, वे चीजें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं, इसलिए मुझे अपने घर में रख छोड़नी है। क्या हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? कर तो ऐसा ही रहे हैं, फिर हम किससे पूछने जा रहे हैं कि हमको सुख का उपाय बता दो? हम ये सारे दुख के उपाय करते रहें और सुख की सिर्फ चर्चा कर लेवें तो इससे सुख मिलने वाला नहीं है। हमें जरूर से अपना ये सोच का ढंग बदल लेना चाहिए भैया, देर सवेर जैसे बने तैसे। ये जो विचार हमारे कि दूसरे से हमेशा मुझे आगे ही बढ़ते रहना है, या कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो बने वो करना है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और तीसरी बात, हमारे पास जो है उसमें हमें शांति नहीं है, हमें तो शांति उस चीज के दूसरे को दिखाने में है। तीसरा दुख का कारण है प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। हमारे पास कुछ है इस बात में हमें तब संतोष मिलता है जब कोई उस चीज को देख लेवे, वरना हमें संतोष ही नहीं होता। हम रास्ते से चले जाएं और हमने नई कार खरीदी हो, जगह जगह रोक करके हमारा मन होता है कि लोग देखें और पूछें हमसे कि ये कब खरीदी, और अगर कोई हमारी कार की तरफ देखे नहीं और अगर हम कहें कि हमने नई कार ली है और वो अचानक कह दे कि सो व्हाट, तो क्या करूं मैं, रखे रहो अपने पास। तो उस कार का खरीदने का सारा जितना भी चार्म था वो सब खत्म हो जाता। कभी नए कपड़े खरीदें और पहन करके बाहर निकलें और कोई देखे ही नहीं, ध्यान ही न दे और कोई पूछे नहीं, तो ऐसा लगता कि खरीदे नहीं खरीदे सब व्यर्थ हो। असल में हमने अपने सोचने का यही ढंग बना लिया। हमारे पास जो नहीं है वो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे पास है वो हम दूसरे को दिखाते फिरते हैं, वो स्वयं नहीं देखते। बड़ा मजा है। जो हमारे पास नहीं है वो हमें, उसके प्रति हम सजग हैं, और जो हमारे पास है उसके प्रति हम सजग नहीं, उसके प्रति तो हम अपनी आंख खोले हैं, चाहते हैं कि दूसरे की आंख मैंने जो पाया उसे देखे, मैं नहीं देखूंगा। जिस दिन मैं अपने पाए हुए को देखने लगूं उस दिन संतोष ना हो जाएगा, फिर ये दौड़ और आपाधापी खत्म ना हो जाएगी। मैं अपने हाथ से इस दौड़ और आपाधापी को बनाए रखना चाहता हूं,
मैं दूसरे से क्या कहूं, मैं स्वयं ही अपने विचारों के द्वारा इस दौड़ में शामिल होता हूं और इसे कंटिन्यू करता हूं। हम सब लोग इसी दौड़ में शामिल हैं। हम जितना जितना पाते चले जाते हैं उसे स्वयं नहीं देखते हैं, उसे हम दिखाने की चेष्टा करते हैं, और पाने का सुख तो स्वयं देखने में है, दूसरे को दिखाने में कभी नहीं है। जो व्यक्ति पाई हुई चीज को दूसरे को दिखाने में लगा है वो उस चीज से कभी सुख नहीं पा सकता, न वो उस चीज का उपयोग कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम समझदार बने फिरते हैं। कैसी है हमारी समझदारी, कैसा है हमारा अपना जीवन का विचार? इस प्रकार के विचार तो हमें अंततः दुख में ही डालते हैं। क्या आज शाम से या इसी क्षण से हम अपने इन विचारों को स्थगित करेंगे, हम कोई अच्छा विचार करने की चेष्टा करेंगे या नहीं करेंगे, या कि अभी और कोई इतवार आएगा जिसमें हम बैठेंगे और फिर बात करेंगे? कितने इतवार जीवन में निकलेंगे जिनमें कि हम जगह जगह जाकर के धर्म के उपदेश सुनेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा इतवार आएगा जिस दिन हम सुबह से इस बात की तैयारी करेंगे कि बहुत हुआ, टू एनफ, बहुत सुना, अब मुझे कुछ कर लेना है? क्या कोई ऐसा दिन आएगा? पता नहीं किसके जीवन में वो दिन कब आएगा। कोशिश तो शायद सबकी यही है। ये प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर ही पड़ी हुई है, उसे हमें अपने भीतर झांक के देखना है और उसे वहां से हटा देना है। आपने कभी घटना सुनी होगी, मैं हमेशा ये घटना सुनाता हूं, जहां जाता हूं वहां सुनाता हूं, मेरे पास कुल बहुत थोड़ी सी बातें हैं सुनाने के लिए, जब सुनना हो तब वही मैं बार बार कहूंगा, हो सकता है वही दोहराऊं। क्योंकि जीवन में अगर इन सब बातों को, बहुत थोड़ी सी बातों को भी हमने ठीक ठीक समझ लिया तो अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। एक बूढ़ी अम्मा की घटना सबने सुनी होगी। वो बूढ़ी अम्मा एक बार एक पान का मचला खरीद के लाई थी, है ना, सुनी होगी वो घटना। तो वो पान का मचला लेकर के आई और वो सबके घर गई, उसको पान खाने का बहुत शौक था, तो वो उस पान खाने के लिए उस मचला में पान निकालती और देखती कि कोई पूछ तो लेता, लेकिन कोई नहीं पूछता। एक दिन क्या हुआ कि हल्ला मच गया मोहल्ले में कि बूढ़ी अम्मा के यहां आग लग गई। लोग भागे भागे गए, देखा तो कुछ टूटे फूटे खराब से सामान में आग लगी थी, कागज वागज भी पड़े थे उनमें भी आग लग गई थी। लोगों ने आंगन फांगन जल्दी से पानी डाला और आग बुझाने लगे। बूढ़ी अम्मा एक तरफ खड़ी और अपने पान के मचले को बार बार खोल के उसमें से पान निकाल के खा रही। एक ने जाकर के धीरे से कहा कि अरे अम्मा, इतना बढ़िया मचला ये कब लिया तुमने, हमने तो देखा ही नहीं। अरे किन ले, पहले कह रही होती तो जा आग ही नहीं लगती। इतना अगर पहले पूछ लिया होता तो आग नहीं लगती। ये नहीं पूछा, मैं अपनी चीज को नहीं दिखा पाया इस बात की, आग मेरे भीतर लगी थी और वो आग बाहर प्रकट हुई, बाद में प्रकट हुई। आग तो मुझे भीतर भीतर पहले जला रही थी, ये तो मुझे बाद में बाहर लगाना पड़ी। और शायद हमें बूढ़ी अम्मा पर तो हंसी आई है, अपने पर रोना कभी नहीं आया कि सचमुच हमने भी तो अपने जीवन को ऐसा ही बना लिया है, किसी और ने नहीं बनाया, हमने अपने हाथों अपने जीवन को ऐसा बनाया। क्या कभी हम इन बातों पर, अपने ही दुख के कारणों पर विचार करेंगे? भैया, जिसके पास जब समय हो तब थोड़ा समय निकाल के इस बात पे विचार करना, और अपने इन विचारों को अगर आप अच्छा मानते हैं तो मैं कौन होता हूं जो आपसे कहूं कि ये अच्छे विचार नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि सचमुच यही बातें हैं जो मेरे जीवन को दुख में डालती हैं, तो अपने दुखों से बचने के लिए अगर हो सके तो आप अपने आप ही अपने जीवन में कोई उपाय करना। यहां तो कोई भी आ जाए वो हमें सिर्फ उपाय बता सकता है, लेकिन यदि हम उपायों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं तो शायद हम अपने जीवन का किसी दूसरे के द्वारा तो कल्याण कर ही नहीं सकते। इन तीनों चीजों से बचने के लिए भी बहुत बहुत सीधा सा उपाय है। क्यों हम प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं, क्यों हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं, क्यों हम अपनी चीजें पा लेने के बाद दूसरे को दिखाना पसंद करते हैं? असल में अदरनेस इज द हेल्थ। असल में ये जो दूसरा है ना, वही हमारे लिए नरक का कारण है। ये दूसरापन, अगर हमारा सबके प्रति अपनेपन का भाव हो जाता तो शायद ये पीड़ा, ये दुख नहीं होता। दूसरा है इसलिए उससे प्रतिस्पर्धा है, दूसरा है इसलिए मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, दूसरा है इसलिए मैंने जो पाया उसे दिखाना है। ये जो दूसरे वाली चीज है, इसलिए शायद किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा कि अदर इज द हेल। मुझे पाना है तो इस प्रेम और प्रीति के द्वारा अपने ही परमात्मा पद को प्राप्त करना है। अगर ये हमारे सोचने का ढंग हो जाए तो संभव है कि हमारे जीवन में जो दुख हम पा रहे हैं, छोटे छोटे से दुख, वे हमारे कम हो जाएं और हम सुख पाने लगे। सुख के पाने का एक ही उपाय मुझे लगता है कि काश हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाए। प्रेम है क्या चीज? जिसमें हम दूसरे को अपना मान लेते हैं वही तो प्रेम है। और पहले हम किसी एक को मानते हैं, फिर दो को मानते हैं, फिर चार को मानते हैं, फिर 40, 400, और एक दिन ऐसा आ जाए कि जब हम सबको अपना माने, सब हमारे अपने हैं, सबके प्रति हमारी आत्मीयता है। अगर ऐसा भाव आ जाए तब फिर कितनी निश्चिंतता होगी और कितना आनंद बरसेगा, ये शायद हमने कभी नहीं सोचा। बचपन में जरूर हम ऐसा करते हैं, बड़े होने पर हम उन सब चीजों में आनंद नहीं पा पाते हैं। बचपन में तो अगर कहीं छोटा सा कुत्ता दिख जावे तो उसको थपथपाने में बड़ा मजा आता है, उसको थपथपा के खुश हो लेते हैं। बचपन में नई नई चीजें देखते हैं तो उनको छू करके बड़ा सुख मिलता है कि हाँ, अरे वाह, ये गुलाब का फूल, उसको थोड़ा छू करके देखूं, बहुत अच्छा लगता है। और बड़े होने के बाद हाँ, गुलाब का फूल, कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी संवेदनहीनता। बचपन में हम जिन छोटी छोटी चीजों को पाकर के भी खुश हो लेते हैं, बड़े होने पर वो हमारी खुशी कहाँ चली जाती है? वो हमारी खुशी असल में हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी घृणा, हमारी ईर्ष्या खा जाती है। एक व्यक्ति दूसरे से जीवन भर द्वेष तो रख सकता है, प्रेम नहीं रख सकता। जीवन भर द्वेष रख सकता है, जीवन भर प्रेम नहीं रख सकता। आज अगर किसी का किसी से स्नेह हो तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, किसी से किसी का द्वेष हो तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। कोई ईर्ष्यावान हो, कोई द्वेषी हो तो कुछ नहीं, दूसरे का राग दिखाई पड़ता है, अपना द्वेष दिखाई नहीं पड़ता। कहीं मैं पढ़ रहा था कि जहां अगर आपको दूसरे का राग दिखाई पड़े तो वहीं अपना धीरे से द्वेष देख लेना, क्योंकि आपका वहां द्वेष जरूर है, इसलिए दूसरे का राग राग मालूम पड़ रहा है। और जहां दूसरे का द्वेष दिखाई पड़े वहां पर अपना राग भी देख लेना, वहां भी कहीं ना कहीं राग छुपा हुआ। और राग और द्वेष दोनों ही हमारे लिए पीड़ा देने वाली चीजें हैं। अकेला द्वेष ही हमें पीड़ा नहीं देता, जब हमारा राग स्वार्थ से युक्त होता है तब वो राग भी हमारे लिए पीड़ा देने लगता है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम लोगों से करते हैं, मैं उस घटिया किस्म के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो हमें सीधा हमारे अपने आत्मा से जोड़ता है, उस आत्म प्रेम की बात। शरीर का प्रेम तो और चीजों का प्रेम तो बहुत है इस दुनिया में, किसे नहीं है। अपने इंद्रियजन सुख जिससे होते हैं उनसे भी हमें प्रेम है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के लिए हमने कभी किसी से प्रेम किया है? वो प्रेम तो एक ही से हो सकता है, भगवान से ही हो सकता है। मुझे अपने आत्मा का आनंद पाने के लिए अगर भीतर से अनुराग प्रकट करना है तो भगवान के प्रति ही, और हरेक के भीतर छुपे हुए उस भगवान के प्रति भी प्रेम होना। इसीलिए तो शायद कहीं लिखा कि कण कण में विराजे राम। अभी तो मूर्ति में नहीं दिख पाते भगवान, किसी के भीतर कहां दिखेंगे भगवान। और अपने ही भीतर जैसे भगवान नहीं दिखते, अपने भीतर जिसके शैतान बैठा हुआ है उसे तो सारी दुनिया में शैतानियत ही नजर आती। जिसके भीतर का भगवान जिसे एक बार दिख जाता है उसे सबके भीतर का भगवान दिखने लगता है। और अगर सबके भीतर अभी शैतान दिखाई पड़ता तो समझना कि हमारे भीतर ही वो बैठा हुआ, वो कहीं बाहर नहीं। क्या हमारी दृष्टि ऐसी हो पाएगी? क्या हम ठीक ठीक देख पाएंगे? ये प्रेम, ये स्नेह जो हमारा भगवान के प्रति और अपने आत्म तत्व के प्रति है, वो हमारे भीतर क्या कभी जागृत हो पाएगा? काश हम कुछ ऐसा करते, या कोई हमारे जीवन में ऐसा आता जो कि हमें इस तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता, या कि हमारे जीवन को ऐसा बना देता। ऐसा विचार कई बार मन में आता तो है। जब हम ही अपने जीवन से थक जाते हैं तब कैसा लगता है कि कोई और होता। जैसे कि कभी हमारा कोई काम उलझ जाता है तो कैसा लगता है कि कोई आता और इसको सुलझा देता, अब हम थक गए। क्या कभी ऐसा ही हमें अपने जीवन में, अपनी जीवन की उलझनों के बीच कभी लगा कि काश हम बहुत उलझ गए हैं इस जीवन में, कोई आता और हमारे उस उलझे हुए तारों को सुलझा देता, लेकिन कोई तो नहीं मिलता जो कि हमारे जीवन की उलझनों को दूर कर दे। और हम ही तो अब इतने कमजोर पड़ गए हैं कि शायद हम उलझना ही सीख पाते हैं, सुलझना और सुलझाना अब हमारे बस का रहा नहीं, क्योंकि हमारे भीतर इतनी अधिक विकृतियां आ गई हैं कि वे विकृतियां हमारे उस स्वभाव को प्रकट ही नहीं होने देती। काश हम एक बार ये ठीक ठीक समझ पाते कि कोई नहीं आने वाला, क्योंकि किसी से हमने कोई कमिटमेंट किया ही नहीं है कि वो आएगा और हमारी उलझनों को दूर करेगा। हमें ही अपने पास आना पड़ेगा और अपनी उलझनों को अपने हाथ से दूर करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी घटना, मेरी बहुत श्रेष्ठ घटनाओं में से मैं शायद आपको ये दूसरी घटना सुनाने जाता हूं। शायद हमारे जीवन को इसी क्षण, जिस क्षण हम सुन रहे हैं उसी क्षण वो विगलित कर दे और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। एक बेटा था और उसकी मां थी, उसके सिर्फ मां थी और उसके कोई नहीं था। मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात समझ पाएंगे, मेरी बात वे लोग जरूर समझ पाएंगे जिनके सिर्फ मां हो और कोई ना हो, या कि जिनके मां भी ना हो और वे अपना जीवन जीते हों, वे जरूर से मेरे जीवन में कही गई बात को समझ पाएंगे। और उसकी मां उसके लिए सब कुछ थी, उसने मां के सिवाय किसी और को देखा ही नहीं था। उसके अपने जीवन के बनाने में मां के सिवाय कोई और नहीं था। मां को बहुत चिंता थी अपने बेटे की कि बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा होकर के ठीक ठीक आदमी बन जाए। मेरे ख्याल से तो सचमुच जो मां है उसको तो ऐसा एहसास होता ही है, जिसे ऐसा एहसास नहीं होता उसने तो अपने भीतर अभी मां बनने के बाद भी मातृत्व को जाना ही नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा बने, ठीक बने, अच्छा बने। अच्छा बने तो कुछ पढ़ लिख ले, अब किससे कहे, कहां ले जाए उसको कि यहां पढ़ लेगा। इतना पैसा भी तो उसके पास नहीं था कि किसी अच्छी स्कूल में अपने बेटे को पढ़ा सके। और जो सरकारी स्कूल था वह बहुत दूर था, उतने दूर अपने छोटे से बेटे को कैसे भेजे। जब जब भी भेजने का मन होता था तो भीतर से दूसरा मन कहता था कि नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं भेजूंगी, छोटा है, कहीं कुछ हो ना जाए। ये क्या चीज है? जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि ये क्या चीज है जो हजारों किलोमीटर दूर अपने किसी प्रियजन के दुख में
मन को मत डालती है और उसमें से आंसू निकाल के ले आती है, ये क्या चीज है? यही तो आत्मीयता है जिसमें हम अपने सिवाय दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। और वही आत्मीयता जब प्राणी जगत पर पूरी तरह फैल जाती है, जब हम प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भर जाते हैं, तभी तो कोई तीर्थंकर की हैसियत से पैदा हो पाता है। लेकिन इतना सा गुणा भाग पढ़ते जरूर हैं हम, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, आज तक नहीं समझ पाए। हम दूसरे को दूसरे से द्वेष करना तो सिखाते हैं, लेकिन प्राणी मात्र से प्रेम करना हम कभी नहीं सिखाते। हम दूसरे पर अविश्वास करना तो सिखाते हैं, लेकिन हम दूसरे पर कभी विश्वास करना नहीं सिखाते। बचपन से न खुद सीखते हैं न दूसरे को। हम दूसरे को धोखा देना तो जानते हैं, लेकिन दूसरे से धोखा खा कर भी अविश्वास नहीं करते, ये विद्या नहीं सीख पाते। एक दिन मां ने बहुत कड़ा मन करके बेटे से कहा कि बेटा जा स्कूल जा, तू पढ़ लिख लेगा तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। बेटे को क्या था, मां जैसा कहे वैसा ही करता था। मां ने कहा है कि स्कूल जाना है तो स्कूल चले जाते हैं। मां ये स्कूल क्या होती है? स्कूल मैं तुझे ले चलूंगी, मैं बताऊंगी कि स्कूल क्या होती है। और मां ले जाती है। वो मां के साथ स्कूल जाता है, देखता है बहुत से बच्चे उसके जैसे वहां पढ़ रहे हैं, एक गुरुजी हैं वो पढ़ाते हैं सबको। मां कहती है कि तू यहीं पर रह और पढ़ लिख करके शाम को वापस आ जाना घर। और मां उसे स्कूल में बिठा के घर वापस लौट आती। आ तो जाती है, लेकिन रास्ते में कई बार मन होता है कि वापस लौट जाऊं, देख तो आऊं ठीक बैठा पढ़ रहा है कि नहीं, किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने कान ही तो नहीं पकड़ लिया। चली जाती है घर की तरफ, लेकिन मन पीछे पीछे हटता है। बामुश्किल घर पहुंचती है, घर के काम में मन नहीं लगता है, सोचती अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। ये क्या चीज है? मैं जब ऐसी घटना पढ़ता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ये है क्या चीज। एक शब्द में कह के आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते कि अरे मुंह है मुंह, एक शब्द में कह के बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते, लेकिन इतना ही सा नहीं है। कहीं कुछ तो है, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति ये जो लगाव है वो किसी बात की सूचना तो दे रहा है, वो उस चेतना के प्रति लगाव की सूचना तो दे रहा है। और शाम होते ना होते वो बेटा वापस लौट के आ जाता है, घबराया है, आकर के जल्दी से मां से चिपट जाता है कि मां अब कल से मत भेजना मुझे स्कूल, और अगर मुझे स्कूल भेजो तो तुम भी वहीं रहना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं मां, किसी ने मारा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं मारा, गुरुजी ने डांटा तो नहीं? नहीं, गुरुजी ने भी नहीं डांटा। फिर क्या हुआ? मां स्कूल बहुत दूर है, बीच में जो जंगल पड़ता है उसमें मुझे बहुत भय लगता है, मैं अकेला रह जाता हूं। अब मां क्या कहे? अगर साथ में जाती है तो घर के काम कौन करेगा, और अगर ये कल से जाना इनकार कर देगा तो ये पढ़ लिख के बड़ा नहीं बन पाएगा, क्या करे? कौन है उसका जिसके सामने जाकर के कहे? रात होती है तो बेटे को सुला करके और अपने कमरे में, जहां एक तरफ उसने भगवान की मूर्ति रख रखी है, सो वहां जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती कि तुम्हारे सिवाय मेरा और कौन है, मुझे कुछ नहीं सूझता, इसे मैं कैसे पढ़ाऊं? ये कहता है कि कल से जाऊंगा नहीं, और अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो ये तो ऐसा ही बुद्धू रह जाएगा, कुछ तो करो, तुम्हें ही सब कुछ करना। शायद ही हम किसी के चरणों में माथा रख के ऐसा कह पाए होंगे
कि अब हमसे कुछ नहीं होता, तुम्हें ही सब करना है, हमारे जीवन की बागडोर हम तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। ऐसा कोई हमारे जीवन में आज तक मिला? कोई नहीं मिला होगा। कोई भी कैसे मिलेगा जब तक कि हम ही उसे नहीं खोजेंगे, जब तक कि हम ही उसे पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं मिलने वाला। श्रद्धा अगर हमारे भीतर एक बार उमड़ जाए, अगर परमात्मा के प्रति और भगवान के प्रति एक बार हमारे जीवन में अनुराग उमड़ जाए, तो हर जगह वो दिखाई देने लगेगा और फिर जीवन बहुत आसान होगा। ये दुनिया के दुख क्षण भर के लिए विस्मृत हुए बिना नहीं रहेंगे। और वो उसका दुख विस्मृत हो गया, उसने कहा बस मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम्हें जो करना हो वो करना, और चुपचाप आकर के सो जाती है। सुबह उठती है, अचानक उसके मन में विचार आता है कि अरे इसमें डरने की क्या बात है, वो भगवान तो सब दूर है। जल्दी से अपने बेटे को उठाती है और कहती जा तो तैयार हो जा, स्कूल जाना है। नहीं माँ, स्कूल तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है, वहां पर जंगल में तो तेरा भैया रहता है। अच्छा जंगल में मेरा भैया रहता, माँ तुमने अभी तक नहीं बताया, हमसे भी बड़ा भैया है क्या? हाँ तुमसे भी बड़ा, सबसे बड़ा भैया है। अच्छा तुमसे भी बड़ा माँ? हाँ बेटे मुझसे भी बड़ा। अब कैसे समझाए अपने बेटे को, अगर मेरा बड़ा भैया जंगल में है तो क्या मेरे बुलाने से आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, तो फिर मैं अभी जाता हूं। अब तो उसे स्कूल जाने का उसको तो लगन लग गई, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, रास्ते में भैया मिलेगा, मैं उससे बात करूंगा, माँ तुमने तो इतने दिन से क्यों नहीं बताया, अब क्या करूं मैं भूल ही गई थी। तो माँ वो हमारे घर क्यों नहीं आता भैया? नहीं वो नहीं आता, वो जंगल में ही रहता। अब ऐसे समझा बुझा कर उसे भेज दिया। अचानक उसे याद आया कि क्या नाम लेके बुलाऊंगा, भैया का कोई नाम तो माँ ने बताया नहीं। वापिस लौट के जाता है, अरे माँ जंगल में भैया को क्या आवाज दूंगा, कैसे आएगा वो? तो कोई बात नहीं, अब माँ क्या कहे, आंख बंद करके एक बार फिर अपने भगवान को याद करती है कि क्या जवाब दूं, झूठ तो कह दिया, लेकिन मन ही मन फिर उसके मन में आता है कि नहीं जा बेटे, भैया का नाम तेरे अरंत भैया है, और रास्ते में अगर तुझे भय लगे तो आवाज देना कि अरंत भैया आओ, वे जरूर आएंगे। और वो बेटा जाता है रास्ते में, और रास्ते में जाकर के उसे भय तो लगता ही है, वो आवाज देता है जंगल में जाकर के कि अरंत भैया आओ तो मुझे भय लगता है। अब वहां तो कोई था नहीं, वो तो सिर्फ श्रद्धा की बात थी, कोई जीता जागता उसका भाई तो वहां था नहीं। वो दो तीन बार आवाज देता है और वहीं पेड़ के नीचे उदास होकर के बैठ जाता, रोने लगता है, रोते रोते कहता है कि माँ ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं कहा, माँ हमेशा सच बोलती है, और माँ ने कहा था कि जंगल में अगर डर लगे तो अरंत भैया को आवाज देना, अरंत भैया तुम हो, और फिर क्यों नहीं आते, मुझे भय लगता है, और माँ की बात तो झूठी हो नहीं सकती। कहते हैं कि इतनी बात कहते ही वहां आवाज आई कि मैं हूं तुम्हारा अरंत भैया, यही हूं, तुम चलो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन बोला होगा वहां, ये भीतर की श्रद्धा बोली होगी जो हमारे साथ किसी और के होने का एहसास कराती है, जो हमें कभी अकेला नहीं होने देती, वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, वही हमारे लिए जीवन का सहारा बनता है, वही हमने खो दिया है, और इसीलिए हम यहां पर भटक रहे हैं, और कोई वजह मुझे तो नहीं लगती। और कहते हैं वो बेटा बहुत खुश होकर के और उनसे बात करता हुआ, जैसे कि कोई वहां है और उसके साथ चल रहा है, इस तरह का अनुभव करता हुआ रोज स्कूल जाने लगा, रोज वापस आने लगा। माँ भी निश्चिंत हो गई कि चलो, पूछा भी नहीं उसने कि क्या हुआ जंगल में और कौन मिला कि नहीं मिला, बेटा खुश है, इसी में माँ की खुशी है और कुछ नहीं पूछना। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में गुरुजी ने कहा कि सब बच्चों को अब, क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई सबकी पूरी होने वाली है, इम्तहान भी हो गए हैं, अब सब बच्चे अपने घर से कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी चीज लेकर के आएंगे और यहीं सब लोग बैठ करके सबके साथ हिल मिल करके खाएंगे। और देखो बच्चों, अपने लिए ही मत लाना, सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा और लेकर के आना। ये बेटा भी स्कूल से गुरुजी से ऐसी बात सुनकर के घर लौटा और कहा कि माँ, गुरुजी ने कहा है कि कल सब बच्चे अपने लिए और थोड़े बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के स्कूल आएंगे। माँ ने सुन लिया लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पास क्या है, मेरे खाने के लिए ही तो ठीक है नहीं, इसे क्या देऊंगी, और चार लोगों के बीच में वहां ले जाकर के ये क्या चीज ले जाएगा जो और के काम आ पाएगी और इसे स्वयं खाने के काम आएगी। बड़ी मुश्किल से तो मैं अपना घर का खर्च चलाती हूं, इसे क्या देऊंगी। बहुत चिंता में डूब गई और रात जब बेटा सोया तो पहुंच गई अपने कमरे में और उसका कौन है भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं नहीं जानती। ये कहता है कि कल स्कूल में गुरुजी ने कुछ ना कुछ सब बच्चों को लाने को कहा है, मैं क्या दे दूं, अब तुम ही हो, तुम्हें जो करना हो सो कर देना, मैं कुछ नहीं जानती। और ऐसा कह के कहते हैं कि सो गई। सुबह उठी तो बेटे ने कहा कि लाओ माँ, क्या लेके जाऊं स्कूल। तो कहा कि माँ ने, अरे बेटे मैं क्या दे सकूंगी, तेरा वो अरहंत भैया है ना, वो ही देगा, रास्ते में मिल जाए तो उसी से मांग लेना, वो जो दे उसे ही ले जा। रास्ते में उसने आवाज दी, अरहंत भैया आओ, माँ ने कहा है कि स्कूल में जो भी ले जाना है वो अरहंत भैया देंगे, तुम देओ क्या ले जाना। आवाज आती है कि कुछ पत्ते इकट्ठे कर लो और एक दोना तो बनाओ। वो दोना बना लेता है, वो उस दोने में दूध भर करके चलता है बड़े खुश होकर के कि अरहंत भैया ने दिया है, और अरहंत भैया ने दिया है तो सबके लिए दिया, किसी एक के लिए नहीं दिया, सबके लिए दिया। क्या कभी हमने अपने दोने में इस तरह का दूध भरा है जो सबके लिए हो? क्या कभी हमने अपने जीवन में इस तरह का स्नेह किया है जो सबके लिए हो? वो लेकर के पहुंचता है तो गुरुजी उसे देख करके बहुत नाराज होते कि चल एक तरफ खड़ा हो जा, इतना थोड़ा सा दोने में दूध लेके आया है, तेरे पीने लायक भी तो नहीं है, सबको क्या देगा तू। हम तो चीजों को ऐसे ही देखने की आदत सीख चुके हैं। उन गुरुजी की भी गलती नहीं थी, जो बहुत बहुत लेकर के आए थे उनके लिए आगे आने दिया और उस वो थोड़ा सा लेके आया था उसे एक तरफ खड़ा कर दिया, वो चुपचाप खड़ा है। सब बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए और उसे कोई नहीं पूछता है। आज यही स्थिति हम सबकी है, हम सबके जीवन में यही स्थिति है। दो पैसे जिसके पास ज्यादा हैं उसका संसार है और जिसके पास दो पैसे नहीं है उसका कोई नहीं। उसका अगर कोई है तो भगवान आज भी है। लेकिन ये बात ख्याल में आती नहीं, उतने आसानी से नहीं आती। वो खड़ा खड़ा देखता है कि क्या करूं, और अचानक उसके मन में आता है कि अरंत भैया ने तो कहा था कि सबके लिए है, मैं इसे सबके लिए दूंगा, ये थोड़ा नहीं है, ये अरंत भैया का दिया है इसलिए सबके लिए। और कहते हैं कि वो अपने दोने से सबके दोने में दूध डालना शुरू करता है। एक के दोने में दूध डालता है, उसका दोना भर जाता है, लेकिन इस दोने में से दूध गिरता ही चला जाता है। दूसरे के दोने में दूध डालता है, उसका दोना भर जाता है, दोने भरते ही चले जाते हैं और वो दूध डालता ही चला जाता है। गुरुजी दूर बैठे बैठे देखते हैं कि ये क्या हो गया, इतना थोड़ा सा दूध और सबके दोने भरते चले जाते हैं, फिर भी दोने में दूध अभी भी बाकी। ज्ञान और प्रेम दो ही ऐसी चीजें हैं जिनके बांटने के बाद वे ज्यों की त्यों हमारे पास रही आती हैं और दूसरे के पास भी उतनी ही हो जाती। दो ही चीजें, ज्ञान देते हैं अपना कम नहीं होता, दूसरे का भी उतना ही हो जाता। प्रेम देते हैं कभी घटता नहीं, बल्कि और दूसरे का भी बढ़ जाता। वो देता चला गया, गुरुजी ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो छोटा सा बेटा गुरुजी की नजरों में भी बहुत बड़ा हो गया। ऐसा है संसार, जहां अपना स्वार्थ सत्ता है वहां हम दूसरे को बड़ा मान लेते हैं, और जहां हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता है वहां हम दूसरे के प्रति अपनी सद्भावना भी नहीं दे पाते। गुरुजी ने कहा, बहुत प्रेम से कहा, जो अभी डांट रहे थे अब उनके भीतर प्रेम उमड़ आया। कहां से लाए बेटे ये, किसने दिया? हमारे अरंत भैया ने दिया। अच्छा, तुम्हारे अरंत भैया कहां रहते हैं? हमारे अरंत भैया जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमें नहीं मालूम कि क्या करते हैं, पर मां ने कहा था कि जब तुम्हें भय लगे तो अरंत भैया को आवाज देना, वो आ जाएंगे। तो हम तो जब भी हमको भय लगता है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम आवाज देते हैं अरंत भैया को, और उन्होंने ही हमें ये दूध दिया था सबके लिए। अब गुरुजी के मन में विचार आता है कि हो ना हो कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, कोई ना कोई चमत्कार तो है। प्रेम का चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता, हाथ पर अगर कोई चीज रसगुल्ला आ जाए तो चमत्कार दिखाई पड़ता है। और किसी के प्रति आत्मीयता हो, और प्राणी मात्र के प्रति जिसकी आत्मीयता हो, वो नहीं दिखाई पड़ता, वो चमत्कार नहीं मालूम पड़ता। हमें तो इन छोटी छोटी भौतिक चीजों की उपलब्धि ही चमत्कार मालूम पड़ती है, अपने भावनाओं की निर्मलता चमत्कार नहीं मालूम पड़ती, अपनी श्रद्धा चमत्कार नहीं मालूम पड़ती। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि अद्भुत है आदमी की श्रद्धा, कि पाषाण में भी वो भगवान को देख लेता है, और इतना ही नहीं, उस पाषाण बने भगवान से या भगवान बने पाषाण से आशीर्वाद लेकर के लौट जाता, ऐसा भरा भरा लौटता जैसे कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अद्भुत है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। गुरुजी ने कहा कि तुम अपने अरंत भैया से हमें मिलवाओगे? अब तो उस बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरुजी ने मुझसे बात करी, मेरी तरफ ध्यान दिया, हां गुरुजी मैं तुम्हें अपने अरंत भैया से जरूर मिलवाऊंगा। और ले जाता है गुरुजी को जंगल में, और वहां आवाज देता है कि आओ तो अरंत भैया, देखो तो कौन आया है, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है? हमारे गुरुजी आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए। बहुत आवाज देता है, लेकिन आवाज के जवाब में कोई आवाज नहीं आती। आवाज के जवाब में आवाज कब आती है? जबकि वो आवाज श्रद्धा की हो। आवाज लौट के नहीं आती तो दुखी होता है,
रोने लगता है कि अरंत भैया हमारे गुरुजी आए हैं और तुम नहीं आते हो। मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, मैं गुरुजी के सामने झूठा पड़ जाऊंगा, मैं उन्हें क्या कह के समझाऊं कि तुम हो। अगर आज अरंत भैया तुम सामने नहीं आओगे तो कोई कभी नहीं मान पाएगा, गुरुजी भी नहीं मान पाएंगे कि अरंत भैया हैं। काश कभी हमने भी ऐसे आवाज दी होती, लेकिन हमने कभी ऐसी आवाज नहीं दी कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के होने में ही हमें संदेह होने लगे। गुरुजी को संदेह हो जाएगा कि तुम हो या नहीं, इसलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी। और कहते हैं कि आवाज आई कि मैं तुम्हारे लिए आ सकता हूं, तुम्हारी मां के बुलाने से आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी को अभी देर है, गुरुजी मुझसे मिलने नहीं आए हैं, गुरुजी मेरी परीक्षा लेने आए हैं, देखने आए हैं कि मैं हूं कि नहीं। जिसके मन में मेरे होने और नहीं होने का विश्वास ही नहीं है उसके सामने मैं नहीं आ सकता, जिसके मन में मेरे लिए विश्वास है उसके निकट मैं हमेशा। मैं आपसे विशेष क्या कहूं, मेरी कहानी तो यहीं पूरी हो गई। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जीवन में अगर सुख और शांति कहीं से मिल सकती है तो वो ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों से मिल सकती है, ऐसी ही श्रद्धा से मिल सकती है, प्रेम और आत्मीयता से मिल सकती है, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन और प्रतिष्ठा से आज तक किसी को न शांति मिली है न कभी मिल सकती है।